नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द डेफिनेटिव गाइड टू आर्म कॉर्टेक्स M3 एंड कॉर्टेक्स M4 प्रोसेसर्स, जोसेफ यू की तकनीकी संदर्भ पुस्तक है। इसका विषय एम्बेडेड सॉफ्टवेयर विकास है, विशेष रूप से ARMv7M वास्तुकला पर आधारित माइक्रो कंट्रोलरों के लिए प्रोग्राम लिखना और उन्हें समझना। पुस्तक कॉर्टेक्स M3 की मूल संरचना, प्रोग्रामर मॉडल, निर्देशों और अपवाद प्रबंधन से आरंभ करती है, फिर कॉर्टेक्स M4 की DSP तथा वैकल्पिक फ्लोटिंग पॉइंट क्षमताओं तक जाती है। इसका उद्देश्य केवल रजिस्टरों और निर्देशों की सूची देना नहीं, बल्कि प्रोसेसर सुविधाओं को वास्तविक सॉफ्टवेयर निर्णयों से जोड़ना है। इसमें सी और असेंबली के मिश्रित उपयोग, CMS IS, टूल जेन, निम्न ऊर्जा मोड, स्मृति सुरक्षा, डीबग और ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन जैसे विषय शामिल है। इसलिए यह पुस्तक डेटा शीट का विकल्प नहीं, बल्कि वास्तुकीय दस्तावेजों और रोजमर्रा के फर्मवेयर कार्यान्वयन के बीच व्यावहारिक सेतु का काम करती है, विशेषकर उन डेवलपरों के लिए उपयोगी है जिन्हें अलग विक्रेता के चिपों पर समान आम कोर व्यवहार को समझना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले ARMv7M प्रोग्रामर मॉडल और निर्देशों से फर्मवेयर की आधारभूत समझ। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान कॉर्टेक्स M3 और M4 को केवल किसी विशेष माइक्रोकंट्रोलर के रूप में नहीं, बल्कि ARMv7M वास्तुकला के कार्यान्वयन के रूप में समझाना है। यह भेद उपयोगी है क्योंकि किसी विक्रेता के परिधीय स्मृति आकार और बोर्ड अलग हो सकते हैं, जबकि कोर के रजिस्टर, स्टैकिंग नियम, विशेष नियंत्रण रजिस्टर और अधिकांश निर्देश व्यवहार समान रहते हैं। पुस्तक प्रोग्रामर मॉडल के माध्यम से यह स्पष्ट करती है कि सी भाषा का कोड अंततः रजिस्टरों, स्टैक और निर्देश प्रवाह पर कैसे निर्भर करता है। निर्देशों और कोडिंग पर चर्चा का व्यावहारिक अर्थ है कि डेवलपर कंपाइलर द्वारा बने कोड को पढ़ सके, आवश्यकता होने पर असेंबली जोड़ सके और ABI आधारित कॉलिंग नियमों को समझ सके। यह ज्ञान अनुकूलन, क्रैश विश्लेषण और मिश्रित सी तथा असेंबली परियोजनाओं में सीधे काम आता है। पुस्तक का जोर किसी एक निर्देश को याद कराने पर कम और निर्देश चयन, डेटा पहुंच तथा नियंत्रण प्रवाह के परिणाम समझाने पर अधिक है। इस आधार के बिना बात के विषय जैसे अपवाद, DSP निर्देश या फ्लोटिंग पॉइंट संदर्भ संरक्षण अलग अलग विशेषताओं की सूची भर रह जाते। इसीलिए वास्तुकला और प्रोग्रामर मॉडल को पुस्तक पूरे अध्ययन का ढांचा बनाती है। दूसरा, NBIC अपवाद और फॉल्ट हैंडलिंग द्वारा नियत समय प्रतिक्रिया का विश्लेषण, कॉर्टेक्स M परिवार की प्रमुख विशेषता नेस्टेड वेक्टर्ड इंटरप्टेड कंट्रोलर अर्थात NVIC, और पुस्तक इसे एम्बेडेड सिस्टम की प्रतिक्रिया क्षमता के केंद्र में रखती है। इंटरप्ट को केवल एक सामान्य फंक्शन कॉल मानना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि अपवाद प्रवेश पर हार्डवेयर स्टैक फ्रेम बनाता है, प्राथमिकताएं तय करता है और आवश्यक स्थिति में एक हैंडलर से दूसरे तक नियंत्रण स्थानांतरित करता है। पुस्तक अपवादों, प्राथमिकता व्यवस्था और फॉल्ट स्थितियों की चर्चा के जरिए इस हार्डवेयर व्यवहार को सॉफ्टवेयर डिजाइन से जोड़ती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि डेवलपर समय संवेदी इंटरप्ट को उचित प्राथमिकता दे सकता है और लंबे या अवरोधक कार्यों को इंटरप्ट हैंडलर से बाहर रख सकता है। हार्ड फॉल्ट तथा अन्य त्रुटि अपवादों की समझ भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि गलत स्मृति पहुंच, अमान्य निर्देश निष्पादन या स्टैक संबंधी समस्याएं अक्सर सामान्य डिबग संदेश नहीं देती। स्वचालित रूप से सहेजे गए रजिस्टरों और फॉल्ट सूचना का अर्थ समझने पर विफलता के वास्तविक निर्देश तक पहुंचना संभव होता है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि सिस्टम टाइमर जैसी सुविधाएं समय आधार और अनुसूचक संबंधी कार्यों में क्यों महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह भाग विश्वसनीय, कम विलंब वाले फर्मवेयर के लिए वास्तुकीय तर्क प्रदान करता है। तीसरा, कॉर्टेक्स M4 की DSP निर्देश, CMS IS, DSP और फ्लोटिंग पॉइंट उपयोग। कॉर्टेक्स M4 M3 की सामान्य माइक्रोकंट्रोलर क्षमता पर अतिरिक्त डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग निर्देश और वैकल्पिक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जोड़ता है। पुस्तक के नए तथा विशिष्ट भागों में इन दोनों सुविधाओं की व्याख्या है। DSP निर्देशों का महत्व उन कार्यों में है जिनमें बार बार गुणा, संचय, सैचुरेशन या निश्चित बिंदु डेटा पर गणना होती है, जैसे फिल्टर, नियंत्रण और सेंसर संकेत प्रसंस्करण। लेकिन केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि कोर में DSP विस्तार है। डेवलपर को डेटा प्रारूप, संख्यात्मक सीमा, कंपाइलर समर्थन और लाइब्रेरी चयन पर विचार करना पड़ता है। CMS IS, DSP लाइब्रेरी के उदाहरणों और संदर्भ से पुस्तक यह व्यावहारिक रास्ता देती है कि हर गणितीय रूटीन को असेंबली में दोबारा लिखने के बजाय मानकीकृत अनुकूलित कार्यों का उपयोग कैसे किया जाए। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट वाला भाग भी इसी तरह संतुलित है। फ्लोटिंग पॉइंट गणना को अपनाने से कोड की पठनीयता और कुछ एल्गोरिदम का कार्यान्वयन सरल हो सकता है, पर सभी M4 उपकरणों में यह इकाई अनिवार्य नहीं है। साथ ही संदर्भ संरक्षण, संकलन विकल्प और प्रदर्शन प्रभाव समझना जरूरी है। पुस्तक सुविधा के प्रचार के बजाय उसके सही उपयोग की शर्तों पर ध्यान देती है। चौथा, CMSIS टूलचेन और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से पोर्टेबल विकास प्रवाह पुस्तक वास्तुकला को विकास परिवेश से अलग नहीं करती। CMSIS का महत्व इस बात में है कि यह कोर रजिस्टरों, स्टार्टअप व्यवस्था और सॉफ्टवेयर घटकों के लिए एक सामान्य ढांचा देता है। अलग चिप विक्रेताओं के उपकरणों में परिधीय नाम और लाइब्रेरी बदल सकती है, पर कोर स्तर पर CMSIS आधारित परिभाषाएं सीखने से कोड और समझ दोनों अधिक पोर्टेबल बनते हैं। कील, आयर, GCC और कुकोक्स क्वायरी जैसे विकास उपकरणों पर आरंभिक मार्गदर्शन पुस्तक को केवल सिद्धांत केंद्रित नहीं रहने देता। नए डेवलपर के लिए प्रोजेक्ट बनाना, स्टार्टअप कोड, लिंकर व्यवस्था और डिबगर से प्रोग्राम चलाना अक्सर निर्देश सेट पढ़ने जितना ही कठिन होता है। मिश्रित सी तथा असेंबली परियोजनाओं की चर्चा भी इसी अंतर को पाटती है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और CMSIS RTOS पर अध्याय ये बताता है कि थ्रेड, समय और संसाधन प्रबंधन में प्रोसेसर सुविधाओं की क्या भूमिका है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर छोटे माइक्रोकंट्रोलर में RTOS आवश्यक है, बल्कि पाठक को इतना आधार मिलता है कि वह साधारण सुपर लूप, इंटरप्रेट आधारित डिजाइन और RTOS आधारित संरचना के बीच परियोजना की समयबद्धता तथा जटिलता के अनुसार चुनाव कर सके। अंत में स्मृति सुरक्षा, निम्न ऊर्जा, डीबग और प्रदर्शन ट्यूनिंग का प्रणालीगत संबंध। पुस्तक का एक अन्य मजबूत पक्ष यह है कि वह कार्यशील कोड लिखने से आगे बढ़कर उसे सुरक्षित, ऊर्जा सचेत और जांचने योग्य बनाने वाली सुविधाओं को जोड़ती है। मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट अर्थात MPU स्मृति क्षेत्रों पर पहुंच नियम लागू करने का माध्यम है। इसका उपयोग गलत कोड या अवांछित पहुंच के प्रभाव को सीमित करने में हो सकता है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलता है जब क्षेत्र सीमाएं और विशेषाधिकार योजना सोच समझकर बनाई जाए। निम्न ऊर्जा मोड की चर्चा बताती है कि ऊर्जा बचत केवल प्रोसेसर को रोकने का नाम नहीं है। जागने के स्रोत, इंटरप्रेट डिजाइन, घड़ी व्यवस्था और परिधीय व्यवहार भी परिणाम बदलते हैं। डीबग, प्रेस तथा ऑन चिप इंटरफेस पर सामग्री त्रुटि खोजने की प्रक्रिया को वास्तुकीय संदर्भ देती है, विशेष रूप से जब अनुकूलन के बाद समस्या दिखाई दे, तब कॉल स्टैक, रजिस्टर और निर्देश स्तर की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदर्शन ट्यूनिंग में भी पुस्तक संतुलन सुझाती है। तेज कोड का अर्थ हर जगह असेंबली लिखना नहीं, बल्कि मापना, सही डेटा पहुंच चुनना, उपयुक्त कंपाइलर विकल्प समझना और कोर की विशेष क्षमताओं का उचित प्रयोग करना है। ये विषय मिलकर फर्मवेयर को प्रयोगशाला के उदाहरण से उत्पाद स्तर के सॉफ्टवेयर की दिशा में ले जाते हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपरों, फर्मवेयर इंजीनियरों और उन्नत विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कॉर्टेक्स M3 या कॉर्टेक्स M4 आधारित माइक्रोकंट्रोलर पर काम कर रहे हैं। शुरुआती पाठक को सी प्रोग्रामिंग और माइक्रोकंट्रोलर की बुनियादी जानकारी हो तो टूलचेन, इंटरप्ट और CMSIS वाले भागों से ठोस शुरुआत मिल सकती है। अनुभवी डेवलपर के लिए इसका मूल्य फॉल्ट विश्लेषण, अपवाद प्रवेश, MPU, DSP विस्तार, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और प्रदर्शन संबंधी वास्तुकीय विवरणों में है। यह किसी विक्रेता के बोर्ड सपोर्ट पैकेज या परिधीय संदर्भ मैनुअल का विकल्प नहीं है, क्योंकि किसी चिप के UART, टाइमर या एनालॉग परिधीय की विशिष्टताओं के लिए अलग दस्तावेज चाहिए होंगे। फिर भी कोर व्यवहार समझ लेने पर ऐसे दस्तावेजों को पढ़ना अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी स्थिति में पुस्तक समान श्रेणी की कई पुस्तकों से अलग दिखती है। व्यापक आर्म सिद्धांत वाली सामग्री कभी कॉर्टेक्स M4 की DSP और फ्लोटिंग पॉइंट जरूरतों तक पर्याप्त गहराई से नहीं पहुंचती, जबकि केवल ट्यूटोरियल शैली की सामग्री अपवाद, स्मृति सुरक्षा और डिबग के पीछे का तंत्र छोड़ सकती है। जोसेफ यू की पुस्तक वास्तुकला कोडिंग अभ्यास और विकास औजारों को एक ही क्रम में रखती है, इसलिए इसका व्यावहारिक लाभ केवल उदाहरण चलाना नहीं, बल्कि अलग चिप, अलग कंपाइलर और जटिल विफलता स्थितियों में तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोसेफ यू, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।